का काम पिघल जाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صدق الله العظيم قابل صد احترام علماء کرام खुसूसन मेरे प्यारे भाई जनाब कारी अहमद अली फलाही साहब दामद बरकातहुम, इसी तरह मेरे वालिद मोहतरम दामद बरकातहुम, दिगर बुजुर्गान दीन और मेरे अजीज नौजवानों, अभी सुबह में मैं बंबई से सूरत पहुंचा और उससे पहले भी मैं अपने भाई कारी अहमद अली साहब से यह कह चुका था कि मुझे कारी साहब का बयान सुनने का मौका साल में एक ही मर्तबा मिलता है जब ये रमजान के महीने में यूके तशरीफ लाते हैं। तो मैंने उनको ये उस वक्त भी कहा था कि मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपकी बातें सुन पाऊंगा और आपसे इस्तीफादा कर सकूंगा। और कारी साहब को ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आज उन्होंने पहले ही से जुनेद भाई को सूरत प्लेटफॉर्म पर तैयार करके रखा था। अभी तो ट्रेन से उतरा हूँ, मुसाफा किया, पहला जुमला जुनेद भाई ने कहा, जुमा में बयान की दावत देने आया हूँ। मैं मना करता रह गया लेकिन कारी साहब नहीं माने। अब आप खुद सोचो कि मैं तो सोच रहा था कि क्यों अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये अल्फाबेट्स इतने ही है, अगर इससे ज्यादा अल्फाबेट होते तो न जाने कारी साहब और कैसी प्यारी प्यारी बातें सुनाते। अल्लाह तबारक व ताला इन कही हुई बातों पर सुनने की तौफीक, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कारी साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। बहरहाल अब आपके सामने बैठ गया हो, कुछ जरूरी बातें आपके सामने बयान कर दो, मुख्तसर सा वक्त है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनु रावी है, फरमाते हैं कि तकरीबन हम 10 सहाबा थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, 10 सहाबा का तकरीबन मजमा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकियसुन नास व अहजमुन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं और हमारा सवाल ये है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सारी दुनिया में, इस पूरी कायनात में दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान कौन सा है, दुनिया का वो कौन सा इंसान है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा होशियार है और जो सबसे अच्छा प्रिपरेशन करता है, ऐसा इंसान दुनिया में कौन सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरहुम इस्तेदादन लिल मौत, उलाइकल अकियास ज़हबू बिशरफ दुनिया व करामत लाखिरा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, दुनिया का सबसे होशियार इंसान, दुनिया का सबसे मोहतात इंसान वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद किया करे, मौत की सबसे ज्यादा तैयारी किया करे। यही लोग अकलमंद है जो दुनिया में भी शराफत को लेकर जाएंगे, आखिरत में भी इज्जत कमाएंगे, जो दुनिया में रहकर आने वाली जिंदगी की तैयारी करे और मौत के आने से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। मेरे भाइयों, आज जुमा का मुबारक दिन है, हम सब अपने घरों से जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जब जुमा का दिन शुरू होता है, एक आदमी जब इरादा करता है कि मुझे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आना है, वो घर पर गुस्ल कर लेता है और घर पर गुस्ल करने के बाद में जो उसके पास अच्छे से अच्छा कपड़ा है वो कपड़ा भी अपने बदन पर पहन लेता है। अगर अल्लाह ने खुशबू मयसर की है वो खुशबू को अपने बदन पर लगा लेता है और उसके बाद में वो जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचता है। मेरे भाइयों, कभी हमें ख्याल आया कि जो अमल में करके अपने घर से आया हो, मैंने गुसल कर लिया, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने बदन पर मैंने खुशबू लगा ली और अब नमाज जुमा पढ़ने के लिए मैं आ गया, एक दिन मेरी जिंदगी में वो भी तो आने वाला है, ऐसा ही मामला होगा, मेरा जनाजा जमीन पर पड़ा हुआ होगा, मैं मैयत बनकर जमीन पर पड़ा हुआ होगा, इसी तरीके से लोग मुझे भी जनाजे का गुसल देंगे, उसके बाद मुझे भी कफन का लिबास पहनाया जाएगा, उसके बाद में मेरे कफन पर खुशबू लगा दी जाएगी, और आप जैसे मैं जुमा की नमाज पढ़ने आया हो, कल लोग मेरा जनाजा उठाएंगे और मेरी भी नमाज से जनाजा पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, ये जुमा का दिन हमें मैसेज देता है, एक पैगाम देता है कि ईमान वालों, यही अमल प्रैक्टिकली तौर पर तुम्हारा मौत के दिन भी होने वाला है, आज तू खुद नमाज पढ़ता है, कल लोग तेरी नमाज से जनाजा पढ़ाएंगे और इसी तरीके से ये दुनिया छोड़कर तू चला जाएगा। मेरे भाइयों, मैं हूं, आप है, हम सब है, एक छोटी सी जिंदगी लेकर आए हैं, एक दिन आएगा हम सब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारु उम्मते मा बैन सित्तीन व सबईन, कि मेरी उम्मत की उम्र को अल्लाह तबारक व ताला ने 60 और 70 के बीच में रखा है, ये एवरेज एज है एक ईमान वाले की, कि बिटवीन 60 एंड 70, 60 और 70 साल के दरमियान की एक उम्र को लेकर आता है, ये एक एवरेज उम्र है। वरना ऐसा भी हमने देखा, एक बच्चा बचपन में चला जाता है, जवान जवानी में चला जाता है, और माशाल्लाह ऐसे बूढ़े भी है कि जो 100 साल भी मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमारे नबी ने फरमाया 60 और 70 के बीच की उम्र लेकर आया है। और मेरे भाइयों, ये तो हम सबको यकीन है, एक दिन हमें दुनिया छोड़कर जाना है, और ये दुनिया ऐसे हम छोड़कर चले जाएंगे जैसे एक परिंदा दरख्त पर आकर बैठता है, थोड़ी देर के लिए चहचहाता है, आवाज करता है, और फिर वो परिंदा दरख्त से उड़ जाता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से दुनिया में हम आए हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, रोजी कमाने में लगे हुए हैं, एक दिन आएगा वो मौत का पैगाम, जब वो मौत का पैगाम आएगा हमें भी दुनिया छोड़कर चले जाना पड़ेगा। हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो मिस्र के फाते हैं, इजिप्ट को उन्होंने कॉन्कर किया है, इतने बड़े फाते थे, इतने बड़े अमीर थे, और उनकी बहुत बड़ी मिलिट्री और आर्मी मौजूद थी। जब उनकी मौत का वक्त आया, मौत के बिस्तर पर पड़े हुए थे, आवाज देकर कहा कि लोगों, जाओ मेरी फौज को बुलाकर लेकर आओ, मेरी आर्मी को बुलाकर लेकर आओ। हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, पूरी फौज जरा देर में वहां पर हाजिर हो गई, हर एक हथियार से लैस है, हर एक के पास सारे आर्म्स मौजूद है, और सब आकर खड़े हो गए और कहा कि हमारे अमीर बताइए क्या करना है, कौन सी जगह पर जाना है, किस मुल्क को फतह करना है, किस दुश्मन का मुकाबला करना है। जब सब के सब खड़े हो गए, हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे साथियों, सामने देखो, सामने देखो, मौत का फरिश्ता मेरे पास आ रहा है, मौत का फरिश्ता मेरे करीब आ रहा है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, रोक लो उसे, मत आने दो उसे मेरे पास, इस फरिश्ते को मेरे पास आने से रोक लो। हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, सबकी आंखों में आंसू आ गए, हर एक जमीन पर देखने लगा, और उन्होंने ये कहा, हजरत हम आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन आपकी जान को जाने से रोक नहीं सकते, आपकी जान को जाने से रोक नहीं सकते। हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यही बतलाने के लिए मैंने तुम्हें जमा किया था, आज अल्लाह ने हमें फतह दी है, हमने इजिप्ट को फतह कर लिया, दुनिया हमारी विक्ट्री के चर्चे कर रही है, लेकिन याद रखना आज मैं मौत के बिस्तर पर हूं, कल तुम्हारी बारी भी आने वाली है। दुनिया की फतह की बुनियाद पर कहीं अपनी मौत को तुम भूल मत जाना। तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी तो हमारी खत्म होने वाली है, और हमारी जिंदगी जैसे वो शायर कहता है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। कि हमारी उम्र बर्फ की तरह है, एक आइस क्यूब की तरह है, कि वो जिस तरीके से मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी पिघल जाएगी। वो दिन आएगा हम भी बर्फ की तरह पिघल कर चले जाएंगे, लेकिन हर अकलमंद ये समझता है कि बर्फ का काम पिघल जाना है, लेकिन बर्फ को अगर मैंने ऐसी जगह पर रख दिया जो साफ जगह है, बर्फ पिघलेगा जरूर लेकिन ठंडा पानी पीने के काम आ जाएगा। लेकिन अगर इसी बर्फ के टुकड़े को मैंने गटर के पास डाल दिया, खराब जगह पर डाल दिया, जमीन पर फेंक दिया, पिघल तो जाएगा लेकिन वो पानी गंदा हो जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसी तरह मेरे भाइयों, ये जिंदगी तो पिघलने वाली है, अगर अच्छाई में हमने गुजार दे, अगर नेक आमाल हमने किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, तो ये जिंदगी हमें आखिरत में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर हमने इस जिंदगी को जाया कर दिया, गलत रास्ते पर डाल दिया, नबी के तरीके के खिलाफ चले गए, जैसे वो पानी गटर में बह गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं हमें भी जहन्नम में फेंक ना दिया जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। मैं अक्सर इंग्लैंड में हमारे नौजवानों को ये मिसाल देकर समझाता हूं कि देखो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गेम्स खेलने के बड़े शौकीन होते हैं। कोई मोबाइल पर खेल रहा है, कोई प्ले स्टेशन पर खेल रहा है, कोई एक्सबॉक्स पर खेल रहा है, ये अलग अलग तरीके से गेम्स खेलते हैं। और आप बच्चों को देखो, जब वो अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे होते हैं, इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, ऐसे उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इन्हें ये पता नहीं चलता मेरे बाजू में कौन है, मेरे लेफ्ट में कौन है, बस अपनी गेम में लगे हुए हैं। वो कार रेस कर रहा है तो इधर हिल रहा है, उधर हिल रहा है कि बस मुझे जीतना है, और वो बच्चा अपनी गेम में इतना लगा हुआ मगन होता है, खेलते खेलते अचानक गेम पर लिखा हुआ जाता है गेम ओवर, यानी गेम खत्म हो गई। मैं उन नौजवानों को यही समझाता हूं, आज दुनिया में हम इतने एनग्रॉस्ड हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है, न हलाल की फिक्र है, न हराम की फिक्र है, न नमाजों का अहतमाम है, न दीन का अहतमाम है, ऐसे मगन होकर दुनिया में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन आएगा हमारी भी गेम ओवर हो जाएगी, हमारा भी वक्त खत्म हो जाएगा, मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और मेरे भाइयों, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। आदमी लाख कोशिश करे, लाख उसे अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाए, लेकिन वो मौत को रोक नहीं सकता। और मौत जवानों पर भी आती है, बूढ़ों पर भी आती है, बच्चा भी चला जाता है। हम तो वो अल्लाह की मखलूक है, जब उसका बुलावा आएगा हम सबको जाना पड़ेगा। एक नौजवान है, कट्टा कट्टा तंदुरुस्त है, चलता फिरता है, एक झटका लगता है, बेचारा मौत के बिस्तर पर चला जाता है। ऐसी हालत होती है, मौत के बिस्तर पर है, चारों तरफ मशीन लगे हुए हैं, सुइयां उसके हाथ में लगी हुई है, और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे वक्त में उसकी बेटी उसके पास आती है, और बेटी आकर अपने बाप से कहती है, अब्बा जान एक बार अपनी आंख खोल लो, अब्बा जान मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हारे पास आई हूं, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, ए अब्बा जान एक बार मुझे अपनी गोद में ले लो, मेरी पेशानी पर बोसा दे दो, अब्बा जान तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम कभी मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते हो, ए मेरे प्यारे अब्बा, आज मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, तुम्हारी बेटी सामने खड़ी है, एक बार तो मुझे गले लगा लो। वो बाप मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बेटी की बातें सुन रहा है, आंखों से आंसू जारी है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि उठकर बेटी को गले लगा ले। बेटी रोती रह जाती है, अब्बा जान ऐसा मत करो, अब्बा जान एक मर्तबा मुझे गले से लगा लो। लेकिन वो बाप जो मौत के बिस्तर पर है, उसके अंदर वो ताकत बाकी नहीं रहती है। यही पड़ा हुआ है नौजवान, उसकी बहन उसके सामने आती है। बहन आकर कहती है, भाईजान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, याद है बचपन में हमेशा तुम्हें गोद में खिलाया करती थी, और भाईजान हमेशा तुम मुझसे प्यार किया करते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाती, मैं जो कहती थी तुम मान लेते थे। ए मेरे भाईजान, आज उठो, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे पास आई हुई है। इसकी आंखों से अब भी आंसू जारी है, ये उठ नहीं सकता है, अपनी बहन को जवाब नहीं दे सकता। बहन भी रोती हुई चली जाती है, उसकी बीवी उसके सामने आती है, बीवी की आंखों में आंसू है। बीवी कहती है, तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि जिंदगी भर खुशी और गमी में हम साथ में रहेंगे, साथ हमारा गुजर होगा, आज बीच रास्ते में मुझे छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, मुझे तुम बेसहारा छोड़ दोगे। अरे मैं तुम्हारे सामने रो रही हो, तुम ही तो कहते थे कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, देखो आज तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने प्लीड कर रही है, तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने तो कैसे वादे किए थे, साथ में जिएंगे, साथ में जिंदगी गुजारेंगे, अपने आप हाथों से अपनी औलाद को बड़ा करेंगे, आज बीच रास्ते में मुझे छोड़कर तुम कहां चले। तुम्हारा वादा था, तुम खुशी में भी मेरा साथ दोगे, रमी में भी मेरा साथ दोगे, कल एक इशारा करती थी तुम पूरा मैसेज समझ जाया करते थे, आज मैं चीख चीख कर पुकार रही हूं लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं देते। बीवी भी रो रो कर साइड पर चली जाएगी, उसके बाद उसकी माँ आएगी, वो माँ जिसने उसे बहुत प्यार किया है, वो माँ जिससे ये बहुत प्यार करता है। माँ आकर कहेगी, बेटे ए मेरे जिगर के टुकड़े, अभी तेरी बूढ़ी माँ जिंदा है, ये तू क्या कर रहा है, ये तूने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है, बेटे एक मर्तबा अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख ले, तू तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, आज तेरी माँ तुझसे सवाल करती है कि बेटा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहा है, आजा बेटे आजा, एक बार मेरे गले लग जा, तू कहता था ना माँ की गोद में मुझे बहुत सुकून मिलता है, आ मेरी गोद में आकर लेट जा। वो माँ रो रो कर अपने बच्चे को पुकार रही है, कहती है बेटा तू तो तेरे पैदा होने के लिए न जाने मैंने कितनी दुआएं की है, मेरी गोद तो सुनी थी, मैं हाथ उठाती तो तेरे लिए दुआएं करती, मैं किसी अल्लाह वाले के पास जाती तो औलाद के लिए दुआ करवाती, मैं उम्रे पर गई तो तेरे लिए रोई, मैं हज के लिए गई तो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर मैंने अल्लाह से तुझे मांगा था, फिर अल्लाह ने मुझे तेरे जैसा बच्चा नसीब किया, आज ये मेरे बेटे बड़ी मुरादों के बाद तू मुझे मिला है, तू मुझे छोड़कर कहां जा रहा है। माँ रो रो कर अपने बच्चे को बुलाती है, बेटे एक बार अपनी माँ को देख ले, अपनी माँ के सफेद बालों का ख्याल कर ले। माँ रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बैठ जाती है, लेकिन जिसके जाने का वक्त आ गया है अब उसे कोई रोक नहीं सकता, सारी मोहब्बत एक तरफ हो जाती है, और उधर अल्लाह का ऐलान हो जाता है, वजा सकरतुल मौत बिल हक, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि मौत का वक्त आ चुका है, इसके जाने का वक्त आ चुका है। कल्ला इजा बलगत तरातिया वकील मन राग वजन अन्नहुल फिराग, मजान नरखरे तक पहुंच गई है, अब कोई शिफा देने वाला नहीं है, इसके जाने का वक्त आ गया है। माँ रो रही है, बीवी रो रही है, बेटी रो रही है, बहन रो रही है, सबको अलविदा कहकर ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है। मेरे भाइयों, आज ये नौजवान गया, कल उसी जगह पर मैं भी होऊंगा, उसी जगह पर आप भी होंगे, हम सबको इसी तरीके से मौत का सामना करना है, तो मौत का आना तो यकीन ही है। मेरे भाइयों, ये जुमा का मुबारक दिन है, आज इरादा करो कि अल्लाह मौत के आने से पहले पहले हमें तेरे नबी के तरीके पर चलने वाला बना दे, तेरे नबी की बातों पर अमल करने वाला बना दे। कभी तो हमने सोचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितनी फिक्र किया करते थे, कैसे रोया करते थे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, खुद बयान करती है कि एक मर्तबा मैं अपने मायके गई, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके वालिद है, मैं अपने मायके गई, दिन भर में अपने अब्बा जान और अम्मी जान के साथ रही। जब शाम का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेने के लिए आए। जब शाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर भी बैठ गए, काफी देर बातचीत होती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा चलो अब काफी देर हो चुकी है, हम घर चले जाते हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात काफी हो चुकी है, क्यों ना आज हम हमारे अब्बा के घर पर आराम कर ले, सुबह में जल्दी चले जाएंगे, अगर आप इजाजत दो तो आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकईतन रहमतुल लिल आलमीन थे। फरमाया, हफ्सा अगर तेरी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं, आज मैं तेरे अब्बा के घर पर ही सो जाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है कि मेरे अब्बा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु बहुत खुश हो गए। उन्होंने फौरन एक तकिए का इंतजाम कर दिया, एक तकिया बिछा दिया गया और हम दोनों मियां बीवी के लिए कोने में जगह कर दी गई और मैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों उस तकिए पर लेट गए। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला का बयान है, छोटा सा तकिया था, उस पर अल्लाह के नबी ने भी सर रख दिया, मैंने भी अपना सर रखा और हम दोनों लेट गए। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे नींद आ गई। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला फरमाती है, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। रात को मैं नींद में थी, अचानक मुझे मेरे गालों पर कुछ हरारत महसूस होने लगी, कुछ गर्मी महसूस होने लगी, जिसकी बिना पर मेरी आंख खुल गई। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है, जब मेरी आंखें खुली है तो मैंने ये देखा कि जिस तकिए पर हम दोनों ने सर रखा था वो पूरा तकिया आंसुओं से भीग गया था। हजरत हफ्सा फरमाती है, जिस तकिए पर मैंने और अल्लाह के नबी ने सर रखा था वो तकिया आंसू से भीग गया था। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो अल्लाह के नबी रोए जा रहे थे और आपके गरम गरम आंसू तकिए पर गिर रहे थे, पूरा तकिया भीग गया था, जिसकी बिना पर मेरा गाल भीग गया और मेरी आंखें खुल गई। मैं डर गई, घबरा गई, मैंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, क्या तकलीफ हो गई आपको, आप इतना रोए इतना रोए, पूरा तकिया आंसुओं से भीग चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाओ आपको क्या तकलीफ हुई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हफ्सा जरा गौर से सुन, जरा गौर से सुन। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है, मैं भी सुनने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हफ्सा में लेटा हुआ था तुम्हारे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़े हुए, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ये आयत करीमा की तिलावत की, कल्ला इन्नहुमा रब्बिहिम यौमइज़िल लमहजूबून, कल्ला इन्नहुमा रब्बिहिम यौमइज़िल लमहजूबून। तुम्हारे भाई कुरान की आयत पढ़ रहे थे जिसमें अल्लाह ने यह कहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह कयामत के दिन अपने दीदार से महरूम कर देगा। ए हफ्सा, जब मैंने ये सुना कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे, मुझे रोना आ गया और मैं दुआ करने लगा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को तेरे दीदार से महरूम मत कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को तेरे दीदार से महरूम न कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा प्यार करते थे हम लोगों से, मेरे भाइयों आज हमारा हक बनता है हम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए। आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर हमारी जिंदगी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरेगी। کہو انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جیسے ہمارے قاری صاحب ہمیشہ یہ وعدہ کرواتے وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ تعالی اب سے لے کر میری موت کی شام تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہونے پائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو. پرشین لینگویج میں فارسی زبان میں شعر ہے. شاعر کہتا ہے یادداری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودن تو گریا این چنازی کے وقت مردنے تو ہما گریا بودن تو خندہ. شاعر کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے اے بھائی اے بچے یاد کر یاد کر یاد کر جس دن تو پیدا ہوا تھا جس دن تو پیدا ہوا تھا ساری دنیا ہنس رہی تھی تو اکیلا رو رہا تھا. ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب ہنس رہے ہوتے ہیں پورا خاندان خوشیاں مناتا ہے جلیبی لاؤ مٹھائی لاؤ گھر میں بچہ پیدا ہوا روتا کون ہے وہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہی روتا ہے سب ہنستے ہیں. تو شاعر کہتا ہے یاد کر جس دن تو پیدا ہوا تھا ساری دنیا ہنس رہی تھی تو اکیلا رو رہا تھا. اب دنیا میں آیا ہے ایسی زندگی گزارنا ایسی زندگی گزارنا اس طرح زندگی سے گزر جانا کہ جب تیرا انتقال ہو جائے ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنستے ہنستے اللہ کے پاس چلا جائے. اللہ میں ایسی موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.